आप सबका स्वागत है इस कृष्ण कथा के कार्यक्रम में। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जैसे आप सब परिचित हैं कि कुछ ही दिनों में भगवान का जो जन्मोत्सव है वो हम मनाने जा रहे हैं, जन्माष्टमी। तो शास्त्रों में जन्माष्टमी का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो जन्मदिन है, भगवान का जो आविर्भाव तिथि है या फिर भगवत जयंती है, उसको कैसे मनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, उस तिथि से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो उसकी तैयारी के लिए श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है कि जन्माष्टमी की असली तैयारी है कि हम सब दो प्रकार की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। एक है आंतरिक तैयारी और एक है बाहरी तैयारी। तो बाहरी तैयारी में सब लोग जुड़ जाते हैं, पंडाल बना रहे हैं और बाकी बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब व्यक्ति ये भूल जाता है कि आंतरिक तैयारी की भी आवश्यकता है कृष्ण को रिसीव करने के लिए। जन्माष्टमी एग्जैक्टली क्या है? जन्माष्टमी मीन्स कि कृष्ण को प्रॉपरली रिसीव करना। हम कहा रिसीव करोगे आप कृष्ण को? अपने हृदय में। तो कृष्ण हमारी बाहरी सुव्यवस्था आदि से इतने अधिक आकृष्ट नहीं होते। वो अरेंजमेंट है या नहीं है उससे कृष्ण इतना आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि ये जो लोग अपने हृदय को प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे रिसीव करने के लिए, तो कृष्ण अपने आप को दे डालते हैं उस व्यक्ति को। तो इसलिए वास्तव में जन्माष्टमी फेस्टिवल को मनाने का मतलब है कि हम अपने हृदय को इस प्रकार से बनाएं कि सरलता से कृष्ण उसमें आकर निवास करें। तो कैसे उसे हम बना सकते हैं? एक सिटिंग प्लेस जिसमें ऐसा हृदय जिसमें कृष्ण आकर निवास करेंगे, क्योंकि कृष्ण को हम इंप्रेस नहीं कर सकते अपनी भौतिक ऑपुलेंस, भौतिक नॉलेज, भौतिक फैसिलिटी, एबिलिटीज, इनके द्वारा आप कृष्ण को इंप्रेस नहीं कर सकते। उनके पास कितने ऐश्वर्य हैं? 6 ऐश्वर्य हैं। अपने ब्यूटी के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा, अपने धन के द्वारा आप कृष्ण को इंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण के पास अनलिमिटेड मात्रा में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है, उनको हम कहां इंप्रेस कर पाएंगे। लेकिन कृष्ण एक ही चीज से इंप्रेस होते हैं, वो है डिवोशन। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो केवल भगवत भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है, और ऐसा व्यक्ति जब मुझे जानता है वो अधिकारी है मेरे धाम में प्रवेश होने का। क्योंकि हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, चाहे आप भौतिक जगत में, हर चीज के लिए योग्यता की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को अप्रोच, भगवत धाम वहां पर जाने के लिए हमारे पास योग्यता की आवश्यकता है, और वो योग्यता क्या है? भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भावना से उनकी सेवा में लग जाना, ये आवश्यकता है। और इसलिए ऐसे हृदय को हमें प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, जिसमें कृष्ण हम रिसीव कर सके और कृष्ण आकर उसमें निवास कर सके। तो वो तभी संभव है जब हम राजा परीक्षित के मूड को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। राजा परीक्षित के जीवन से हम देखते हैं, पूरे 12 वर्ष के राजा थे, पांडवों के आखिरी वंशज एक प्रकार के महाभारत के युद्ध के बाद। लेकिन वो जब वन यात्रा करने गए, वन जंगल में कुछ शिकार आदि करने गए, लेकिन भूख प्यास से वो बहुत विचलित हो गए और एक ऋषि की कुटिया में गए तो वहां शमिक ऋषि नामक जो ऋषि है वो तपस्या में बैठे हुए थे और वो ध्यान बिल्कुल ध्यान मग्न थे। लेकिन राजा को लगा कि मैं आया हूं, मेरा स्वागत होना चाहिए, मैं इतना भूखा हूं, मैं इतना प्यासा हूं, मुझे जल आदि अर्पित करना चाहिए, ये तो यहाँ ध्यान पर ढोंग कर रहा है, अपने आतिथि की सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि आतिथि क्या है, आतिथि देवो भव, भगवान या देवता का सम्मान आप कैसे करते हो इससे पता चलता है कि आप आपके अपने घर आए हुए अतिथि का आदर और सम्मान कैसे करते हो। इस प्रकार से वो श्रमिक ऋषि तो मग्न थे ध्यान में, राजा परीक्षित को गुस्सा आया, कंट्रोल नहीं कर पाए अपने वेग, भूख और प्यास के वेग को, उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाला, जैसे उन्होंने डाला और वहां से निकल गए और उनके उनका जो पुत्र था श्रृंगी उसको पता चला मेरे पिता के गले में डाला है मरा हुआ सांप, हम एक नदी में स्नान कर रहा था बच्चों के संग में, वही उन्होंने उस नदी के जल को उठाया और श्राप दिया, ऐसा जो व्यक्ति निर्लज्ज जो अपने मर्यादा में मर्यादा का उल्लंघन करता है, ऐसे बलशाली राजा क्यों ना हो, उनको मैं श्राप देता हूं कि सातवें दिन में अद्भुत जिसको पंख है उड़ने वाला तक्षक सर्प आके काटेगा। तो जैसे ये मृत्यु का न्यूज उनको मिला राजा परीक्षित को, उन्होंने कुछ उसमें बदलाव करने का विचार नहीं किया, शास्त्र कहते इतने पावरफुल थे किंग परीक्षित कि वो उस ऋषि को भी श्राप दे सकते थे और इससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये कृष्ण की सुप्रीम अरेंजमेंट है मेरे लिए, ताकि मैं इस भौतिक जगत के प्रति वैराग्य या विरक्ति को अपने जीवन में लाओ और 100% केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, हाँ, ताकि पूर्ण रूपेण दिव्य सुख की अनुभूति कर सकता हूं। तो ऐसे परीक्षित ने सारे भौतिक आसक्तियों को त्याग किया और वो गए गंगा के किनारे और वहां जाकर, वहां भक्तगण थे और वहां जाकर उन्होंने गंगा का शेल्टर लिया, भक्तों का शेल्टर लिया, आश्रय लिया और उन्होंने कहा कि अभी मुझे बिल्कुल भय नहीं है, हम सब भयभीत है इस जगत में, है ना, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भय नहीं है, आप क्या करो, गायतः विष्णु गाथा, आप सब लोग गाओ, क्या गाओ, भगवान के गुणों का गान करो, लाइफ इसलिए है, सुबह से शाम तक हम किसी न किसी का गुण गाने में अपना जीव और अपनी इंद्रियां, अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और फाइनली हम अनुभव करते कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया किसी और का गुणगान करने में, इस जीवा के द्वारा जिसके मुझे कुछ सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसे है परीक्षित महाराज ने केवल एक ही चीज का आश्रय लिया और वो था परम भगवान का गुणगान, भगवान के जो कार्यकलाप है उनका उन्होंने आश्रय लिया और भगवान की योजना के अनुसार वहां शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र पहुंचे। शुकदेव गोस्वामी वहां आए और शुकदेव गोस्वामी का वो सम्मान आने करके उनको कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है, कृष्ण की ये परम योजना है जिसके कारण आप यहाँ आए हो और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न क्या है, अथा पृच्छामि, वो कहते हैं कि मैं पूछ रहा हूं, योगिनां परमं गुरु, हे योगियों में परम गुरु, कि इस संसार में किसके बारे में व्यक्ति को सुनना चाहिए, किसका व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, किसके नामों का वर्णन करना चाहिए और किसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे 4-5 प्रश्न पूछे। वो कौन से व्यक्ति के लिए जो मृत्यु के नजदीक है, उस व्यक्ति के लिए किसकी आराधना श्रेष्ठ है, किसके नामों का उच्चारण करना चाहिए, किसकी सेवा आदि करनी चाहिए, ये हर एक व्यक्ति के लिए, ऐसे नहीं कि परीक्षित के लिए है, हम भी मृत्यु के नजदीक हैं, हमें अपना स्थल का पता नहीं है, हाँ, लेकिन हम इस आशा से जीते हैं कि मैं करोड़ों साल के लिए इस शरीर मेरे पास है, लेकिन मूर्ख की बात यह भूल जाते हैं कि ये टेम्पररी बॉडी हमें कुछ दिनों के लिए रेंटेड होम मिला है, अरे कभी भी खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न पूछा तो शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका एक ही कर्तव्य है जीवन में, क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्येच देह पूज्यच नित्यदाम। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान, परम भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, उनका गुणगान करना, उनकी सेवा करना, यही एकमात्र परम कर्तव्य है। सारे बाकी कर्तव्य ड्यूटीज इस एक कर्तव्य में निहित है, इंक्लूड है। क्यों 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 यह आवश्यक है? क्योंकि अंते नारायण स्मृति, व्यक्ति के जीवन की सफलता यही है कि मृत्यु के समय वो कृष्ण का स्मरण करे, भगवान का स्मरण हो। हमें तो बहुत ही जितना मर्जी हम सुविधाओं को अर्जन करें, लेकिन मृत्यु के समय हमें भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो फिर शुक्रदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने एक ही चीज के लिए अपना लाइफ सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास मरने के लिए कितने दिन बचे हैं? 7। तो राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे फिक्स। 7वें दिन वो तक्षक आकर उनको काटने वाला था, उनके पास 7 दिन थे। लेकिन हमारे पास कौन कह सकता है कि मेरे पास 7 सेकंड है, 7 घंटे हैं, 7 दिन है, 7 महीने हैं? कोई नहीं कह सकता। ऐसे राजा परीक्षित ने शुक्रदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की और उनसे कहा कि आप बिना किसी रुकावट के कृष्ण का वर्णन करो। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी, शुक्रदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं, शुक्रदेव गोस्वामी ने कृष्ण कथा का गान करना शुरू किया। शुक्रदेव गोस्वामी ऐसी पर्सनालिटी है, जिस प्रकार से स्पंज होता है ना, गीला करो आप, गीला करो, उठाओ, थोड़ा टच करो, टच करने से क्या होगा, सारा पानी तुरंत पानी टपकने लगेगा। तो वास्तव में शुक्रदेव गोस्वामी उस स्पंज के बाती हैं, कृष्ण कथा से उनका हृदय भरा पड़ा है। क्योंकि भगवान के भक्त का लक्षण क्या है कि राम भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं उसके हृदय में एक स्टोर हाउस बन जाता है भक्त का हृदय। और जिस प्रकार से समंदर में लहरें बिना रुकावट के निकलती रहती हैं एक के बाद एक, उसी प्रकार से जो परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय से कृष्ण कथा रूपी जो लहरें हैं अनवरत बिना किसी रुकावट के निकलती रहती है, या उस स्पंज को हाथ लगाओ तो टपकने लगेगा पानी कंटिन्यूअसली। तो वैसे ही परीक्षित महाराज ने तो शुक्रदेव गोस्वामी को जस्ट टच किया, बोला क्वेश्चन के द्वारा, और शुक्रदेव गोस्वामी कृष्ण कथा का वर्णन करने लगे। तो ऐसे जब ये कथा शुरू होने वाली थी, भगवान का वर्णन होने वाला था, उस समय देवता गण भी सुनने के लिए लालायित हो गए। उन्होंने कहा अरे इतना अमेजिंग कृष्ण कथामृत बह रहा है और हम लोग निर्लज के बाद ही स्वर्ग में भौतिक भोग करने में पागल हो रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ रस की अनुभूति नहीं हो रही है, उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। भौतिक भोग का आनंद क्षणिक है, शुरुआत में वो सुखदायी है और उसका अंत निश्चित रूप से क्या है, कष्टदायक है। तो ऐसे देवतागण सारे एकत्रित हुए हैं और उन्होंने कहा इस परीक्षित को मरना है, इसको अमृत दिया जाए तो ये अमर हो सकता है, परमानेंटली जीवित रह सकता है। तो एक कलश में अमृत लेके आया और शुक्रदेव गोस्वामी बैठे थे, परीक्षित थे और बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनको कहा कि हे शुक्रदेव आप ये अमृत ले लो और ये अमृत क्या करो, उनको भी पिलाओ और आप भी पी लो, लेकिन एक चीज हमें दे दो, क्या है, कृष्ण कथा जो वर्णन करने जा रहे हो, कृष्ण का गुणगान, क्योंकि ये अमूल्य धन है। तो शुक्रदेव गोस्वामी हंसने लगे, उन्होंने कहा ये जो कृष्ण का ग्लोरीज है, कृष्ण का गुणगान है, इसकी तुलना आप इस अमृत से नहीं कर सकते। कृष्ण की जो महिमा है वो एक रत्न के भांति है, मूल्यवान रत्न, और ये जो अमृत है ये तो बिल्कुल निकृष्ट कांच के टुकड़ों के समान है। देवताओं को कहा आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप इस अमृत को लेकर खुद पीते रहो और चले जाओ यहां से, क्योंकि आपके अंदर इस भौतिक संसार को भोगने की अभी भी तीव्र लालसा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम कहता है, श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम, गृण तुचेषिता काले नीर्घे न भगवान विशते हृदय। परीक्षित महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जस्ट केवल श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, चाहे वो भौतिक रूप से वो योग्य है, योग्यता है या नहीं है, लेकिन एक फेथ श्रद्धा के साथ सुनता है, तो परीक्षित महाराज ने काले कहा काले न अति दीर्घे न, समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदय, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बंध जाएंगे। इतना पावरफुल है भगवान के बारे में श्रवण करना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसने इस चीज को समझ लिया है। इसलिए हाँ, परीक्षित जो हिरण्यकश्यपु है उनको अपने पुत्र प्रहलाद, छोटे से 5 साल के बालक, वो कहते हैं मैंने स्कूल में एक ही चीज सीखी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण करना, उनका गुणगान करना और उनका स्मरण करना सीखा है। इसलिए ये जो भगवत चर्चा है एक अमूल्य निधि है और उसको हमें अधिक से अधिक अपने कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश कराना चाहिए, क्योंकि कृष्ण इन आंखों से अंदर नहीं जाएंगे, कृष्ण को इस आंखों के द्वारा आप जान नहीं सकते, आप हमेशा भ्रमित हो जाओगे। क्योंकि अब भारत में यदि इलेक्शन कराओगे कृष्ण और राम के बारे में तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे, राम को, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण हमेशा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, हमेशा रहस्यमय है, वो अपने यह छोटे बालक नहीं थे तो पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं की। हाँ, कंस अलग अलग टॉयज भेजता था वृंदावन में, भेजता था कि नहीं, छोटे बच्चे के लिए टॉयज चाहिए, अभी मामा है तो भेजेगा टॉय अपने भांजे के लिए। सारे टॉयज क्या थे, कभी आगासुर था, कभी बकासुर था, कभी पूतना थी, कभी केशी था, कभी कुछ था, इस वही टॉयज जाते थे और कृष्ण टॉयज को तोड़ के भेज देते थे, नया टॉयज खिलौना अरेंज करते थे। तो कृष्ण बहुत अधिक रहस्यमय पर्सनालिटी है, उनको भौतिक बुद्धि के द्वारा जानना असंभव है। अवजानान्ति मामूढा मानुषिक तनुमाश्रितम, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं समझ सकते, वो हमेशा ये सोचते हैं, ये जानते हैं, इस प्रकार से मुझे सोचते हैं कि ये इन्होंने ये मनुष्य देह धारण किया है, मानुषम देहम आश्रितम, मनुष्य के शरीर में है, हाँ ये भगवान नहीं है। तो इसलिए भगवान को जानना है तो उसके लिए वास्तव में भक्ति के चक्षु चाहिए, हाँ पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हाँ, तो भगवान को जानने के लिए इस चीज की आवश्यकता है और वो योग्यता कैसे आती है, जब हम श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। तो ऐसे परम भगवान कृष्ण की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में वर्णित हैं और इनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के लिए किया था। और ऐसे राजा परीक्षित मृत्यु के कगार में खड़े थे, उन्होंने कहा बोलते जाओ, कृष्ण का गुणगान करते जाओ। फिर शुकदेव गोस्वामी कृष्ण का वर्णन करने लगे, कृष्ण का वर्णन करते करते उन्होंने भगवान के कई सारे अवतारों का वर्णन किया, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया और जब उन्होंने कहा एते चंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे, कि मैंने इतने सारे अवतारों का जो वर्णन किया है ये परम भगवान कृष्ण के अंश और कला है, लेकिन अभी मैं जिनके बारे में बोलने जा रहा हूं वो कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात परम भगवान है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सबसे अंतिम में बहुत विस्तार से किसी का वर्णन किया है तो वो कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है, क्यों, क्योंकि वो कौन है, परम भगवान है। तो ऐसे कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते समय राजा परीक्षित ने कहा कि वास्तव में भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनका व्यक्ति जब सुनता है तो वो असली दवाई है हमारे जीवन में, क्योंकि कृष्ण की जो एक कथा है, कृष्ण के जो कार्यकलाप है वो 3 प्रकार के लोगों को भी हमेशा शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक भोग में लिप्त है वो भी इसको सुनना चाहता है, कि क्या सुनना चाहता है, अरे कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, क्योंकि इसके अंदर इतनी काम वासना है तो इसको वही
हाँ लीलाओं को सुनने की इच्छा होगी, हाँ बल्कि हाँ इसलिए अध्यात्म के आंखों से इनको जानना बहुत आवश्यक है। इसमें भौतिक हाँ काम आदि का लवलेश मात्रा उपस्थित नहीं है। इसलिए शास्त्रों को जानने के लिए भगवान के जो भक्त हैं उनका आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। उनके बिना हम भगवान के कार्यकलापों को समझ नहीं सकते। तो ऐसे भगवान के कार्यकलापों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि हे परीक्षित, अभी लंबा समय बीता है, कब से तुम क्लास में बैठे हो? कितने दिन की क्लास थे उनके? 7 दिन 7 रात, कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक नाम की चीज वहां नहीं है कि अभी टाइम हो गया परीक्षित महाराज, जाओ जरा प्रसाद ब्रेकफास्ट करके आओ, थक गए होंगे आप, कमर दर्द हो रही होगी, है ना, काम बचे होंगे बहुत सारे। तो बीच में है जब 3-4 दिन बीते हैं, चौथे या पांचवे दिन जब कृष्ण का वर्णन शुरू किया, परीक्षित महाराज ने कहा आप सुनाते जाओ, हाँ मुझे अभी ना भूख सता रही है ना प्यास सता रही है। ये उन्नत लेवल है कृष्ण भावना का। हाँ व्यक्ति किसी चीज में ऑब्जर्व हो जाता है, हाँ जैसे बच्चे हैं खेल कूद में कितने मग्न हो जाते हैं, माता पिता चिल्लाते रहेंगे बुलाते रहेंगे, घर में खाना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी भी बच्चे नहीं आते। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व ऑब्जर्व हो गए हैं, मग्न हो गए हैं, निमग्न हो गए हो। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने में उनका गुणगान करने में निमग्न हो जाता है, इस भौतिक आवश्यकताओं से वो नेचुरली ये आवश्यकताएं कम हो जाती है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी उनको भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण कथा एक तो जो सुनता है एक तीनों को पवित्र करती है, एक जो श्रोता है, श्रोता में जो सुनता है, दूसरा जो वक्ता है, वक्ता में जो इसका वर्णन करता है, और तीसरा वो व्यक्ति जो जिज्ञासा के साथ सुनता है, लालसा के साथ, जिज्ञासा इंक्वायरीज क्वेश्चंस आदि के साथ, कुछ जानने की लालसा है, इस भावना से सुनता है, तो ये कृष्ण कथा उसको शुद्ध करती है। तो इसलिए इसकी तुलना गंगा से की गई है। गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी कहते हैं, वहां सबको पवित्र करती है। वही गंगा जब नीचे आती तो उसको जाह्नवी या गंगा कहा जाता है, सब पूरे पृथ्वी को पवित्र करती है। वही गंगा जब पाताल के 7 लोकों में जाती है उसको भोगवती कहा जाता है, उनको पवित्र करती है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो कथा है, कृष्ण के कार्यकलाप, ये तीनों प्रकार के लोगों को, तीनों प्रकार के जो जगत हैं उनको शुद्ध कर देते हैं। तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि इनको हम ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक सुनकर इनका मनन आदि करें और भगवान के कार्यकलापों को स्मरण करें। तो जितना अधिक हम इसमें मग्न रहेंगे उतना ही अधिक हमारा जो मन है वो शुद्ध होने लगेगा, हमारी जो चंचलता है वो खत्म होने लगेगी। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि किस प्रकार से परम भगवान कृष्ण इस जगत में अवतरित हो जाते हैं, किस प्रकार से वो जन्म ग्रहण करते हैं। बल्कि क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होता हूं। भगवान का अवतार लेने का कोई और उद्देश्य नहीं है। ये नहीं कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं, नहीं, भगवान का आने का ये प्रमुख रीजन नहीं है, प्रमुख प्रयोजन नहीं है। भगवान का इस जगत में आने का प्रमुख प्रयोजन क्या है? एक ही चीज, 2 चीज के लिए भगवान आते हैं इस जगत में। ये इसलिए आते हैं, तो सबसे पहले यही है, परित्राणाय साधुनाम, अपने जो प्रेमी भक्त हैं उनको दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए आते, बस इसी को शास्त्र कहते हैं भक्त सुख देते हैं। कि भगवान आते हैं, पहला कारण है भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए,
और दूसरा कारण क्या है, भगवान जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, दिव्य कार्यकलाप, जिनको सुनने मात्र से व्यक्ति एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति करता है। तो ऐसे लीलाओं को भगवान इस जगत में प्रकट करते हैं तो वो लीलाएं छोड़ के चले जाते हैं कथा के रूप में, फिर जो महान ऋषि मुनि है उसको रिकॉर्ड करते हैं ग्रंथों के माध्यम से, और फिर जो सर्व सामान्य जनमानस है उसको जब सुनता है, चर्चा करता है, हाँ, उससे वो लाभान्वित होता है और भगवान के प्रति धीरे धीरे अपने जो ढकी हुई, ढका हुआ जो उनके लिए जो प्रेम है हृदय में, उसको जागृत करने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, आसक्ति है, बड़ा विशेष लगाव है, लेकिन अभी वो ढक गया है भौतिक भोग की इच्छाओं के कारण। तो उसको कैसे वापस जागृत किया जाए, कैसे जागृत किया जाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण उसका पहला स्टेप है, श्रवण आदि, श्रवण और बाकी भगवत सेवाएं, इनको हम जब नियमित करते हैं तो करय हृदय, हृदय से भगवान के लिए स्वाभाविक प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाने होने लगता है। तो इसलिए भगवान अवतरित होते हैं सबसे पहले अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और दूसरा है कि अपनी ये जो लीला कथा है इसको पीछे छोड़ने के लिए, ताकि सारे जगत इसको श्रवण करके, चर्चा करके लाभान्वित हो सकता है। तो ये भगवान के अवतरण का प्रमुख कारण है। भगवान ये जगत में फोर्सफुली नहीं आते हैं, हम इस जगत में जन्म लेने के लिए बाधित हैं। भगवान कहते नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, ना मुझे इस जगत के कर्म आदि से बंधन है और ना मुझे कोई आसक्ति है इस जगत में आकर कार्य करने की, लेकिन हम इस जगत में आते हैं अपने पूर्व कर्मों के कारण फोर्सफुली हमें फेंका जाता है, और हमारे न चाहते हुए भी ऐसे अलग अलग शरीरों को हमें धारण करना पड़ता है। कौन चाहता है कि उसकी एक आंख खराब हो, ऐसा शरीर कौन चाहता है कि एक पाँव काम ही नहीं कर रहा है, एक बाहु खत्म हो गई है, हाँ, ऐसा शरीर कोई चाहता है नहीं। हम सब ऐसा रुष्ट पुष्ट और सुंदर ब्यूटीफुल शरीर चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं, और हर कोई व्यक्ति बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म लेना चाहता है कि जन्म लेते ही जो गोल्डन स्पून है उसके मुंह में हो, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होता। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जीव जन्म लेता है, उसकी इच्छा के विरोध में हो रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण के अगेंस्ट बर्ताव करना शुरू किया है, भगवान के अगेंस्ट। तो भगवान ने कहा बेटा ठीक है, हाँ, जीव जो भगवान बनने की इच्छा करता है, भगवान की पोजीशन प्राप्त करना चाहता है, तो कृष्ण उसको भेज देते, जाओ भौतिक जगत तुम्हारे लिए है, जाओ वहां भगवान बनने का प्रयास करो। तो यहां आता है, दिन रात इसी ओढ़ में लगा रहता है कि मुझे सब कुछ बड़ा बनना है। बड़ा बनना है मतलब क्या बनना है, भगवान की पोजीशन हासिल करना है, सुंदरता में भी, बल में भी, धन में भी, ज्ञान में भी, वैराग्य में भी, सब प्रकार से हम भगवान की पोजीशन को हड़प करके हम वो बनना चाहते हैं, लेकिन हर समय व्यक्ति अपयश को प्राप्त करता है और यातनाओं को सहते रहता है इस जगत में। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान का आने का एक प्रमुख उद्देश्य है केवल भक्तों को सुख प्रदान करना। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के शुरुआत के अध्याय में कृष्ण चरित्र का, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन आता है। तो कृष्ण लीला, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, इजीली आप उनको समझ नहीं सकते। निश्चित रूप से आप भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर भ्रमित हो सकते हैं कि ये ऐसे ही क्यों कृष्ण के साथ, हाँ। तो ऐसे कृष्ण का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि एक समय जो पृथ्वी देवी है वो बहुत अधिक आसुरों के भार से बोझिल हो गई, बहुत अधिक पीड़ित हो गई, क्योंकि पृथ्वी भी एक पर्सनैलिटी है,
हर नदी भी एक पर्सनैलिटी है, समंदर भी एक पर्सनैलिटी है। तो पृथ्वी देवी जो आसुर लोग थे मतलब मनुष्य ही, लेकिन जिनको अपने सेना, अपना राज्य, अपना धन, अपने पावर का घमंड हो गया था, गर्व हो गया था, और वो उसका मिसयूज करने लगे थे ऐसे लोगों से, और पापमय कार्यों में निरंतर लगे हुए थे। हाँ, तो ऐसे लोगों से जो पृथ्वी बहुत भर गई थी, बोझिल हो गई थी, तो ऐसी पृथ्वी दुखी थी। पृथ्वी कब आनंद अनुभव करती है? पृथ्वी कहती है वैष्णवगण अवनिर सुसंपद। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णवगण अवनिर सुसंपद। भगवान के जो भक्त है वो पृथ्वी के ऑर्नामेंट से आभूषण है। जैसे कोई स्त्री अलग अलग प्रकार से आभूषण धारण करती है तो सुंदर लगती है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने आप को आभूषित करती है। कैसे? भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा। जब भगवान के शुद्ध भक्त इस पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी देवी बहुत अधिक आनंदित होती है, नाचने लगती है, हंसती है, गाती है, और विपुल मात्रा में जो संपदा है, फल है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, जो खनिज आदि है, रत्न आदि है, वो प्रोवाइड करती है। पांडवों के समय भागवतम में इसका वर्णन आता है। तो लेकिन जब ऐसे पापी लोगों के कारण वो बहुत दुखी हो जाती हैं, और ऐसी पृथ्वी ब्रह्मा को अप्रोच करती है एक गाय का रूप धारण करके, और साथ ही साथ वो रोने लगती है। क्यों रो रही थी? क्योंकि भगवान के हृदय का जो दया है उसको जागृत करने के लिए। हाँ, जैसे बच्चे के आंख में आंसू नहीं आते तो माँ का हृदय पिघलता नहीं है, जब बच्चा रोने लगे तो उससे ज्यादा आंसू माँ के आंखों से बहने लगते, क्योंकि इतना अटैचमेंट है, इतना प्रेम है। तो उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं, हाँ, भगवान के प्रति को आकर्षित करने के लिए पृथ्वी देवी एक गाय का रूप धारण करके। क्यों? क्योंकि कृष्ण को दो चीजें प्रिय है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को गाय प्रिय है और उनके जो भक्त हैं, ब्राह्मणास हैं, वो बहुत अधिक प्रिय है। भगवान अपने आप को दे सकते हैं, अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं इन दोनों की सेवा के लिए। इसलिए भगवान ने सब चीजों को छोड़ा, इतना बड़ा एक प्रकार से पोजिशन है कृष्ण का। लेकिन इस भौतिक जगत में जब वो आते हैं तो क्या 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 जॉब करते हैं? गायों को चराते हैं। अभी कोई पीएचडी हो जाए या बहुत बड़ा, अब सोचो रिलायंस या टाटा बिरला, ये लोग आके किसी गांव में गाय चराने लगे तो कुछ लोग सोचने लगेंगे। तो वैसे ही भगवान सारे जगत के स्वामी हैं, लेकिन इस प्रकार से सेवा करते हैं इन दोनों की। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त और गाय सब कुछ अपने आप को उनकी पूर्ण रूपेण सेवा में लगा देती है। गाय की हर चीज कृष्ण की सेवा में है, उनका दूध है, उनका हर चीज। और इवन जो ब्राह्मणास है, भक्त है, वो भी अपना शरीर बनवाने सब कुछ कृष्ण की सेवा में समर्पित करते हैं। तो ऐसे जो पृथ्वी है वो ब्रह्मा को अप्रोच करती है और वो कहते कि मैं बहुत अधिक दुखी हूं। ब्रह्मा ने पूछा, क्या दुख है तुम्हारे पास? तो वो डिस्क्राइब करते, वर्णन करती है, और फिर ब्रह्मा उनको शिवजी के पास ले चलते हैं। फिर वहां से सारे टीम, सारे देवतागण वगैरह इस ब्रह्मांड के अंदर, अभी हम सब लोग फुटबॉल में है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है ना, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिसमें 14 प्लैनेट्स हैं एक के ऊपर एक, और ये सारा ब्रह्मांड एक कमल के फूल के जो डंडा है उसके अंदर कमल लाल के बीच में है सारे जो ब्रह्मांड आदि है। तो ऐसे ये जो सारे जो 14 लोक हैं, तो ऐसे ब्रह्मा फिर इन सबको लेकर, इन सारे देवतागण वगैरह इस जगत में एक लोक है जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप, वहां जाकर वहां भगवान विष्णु क्षीरोदक शाही के रूप में निवास करते हैं। क्षीर, क्षीर का मतलब है दूध, क्षीरोदक शाही जो सागर है दूध का बना हुआ, उसमें भगवान अनंत शेष में लेटते हैं। तो उसके उस सागर के किनारे ब्रह्मा देवता आदि जाते हैं ब्रह्मा ध्यान लगाते परम भगवान के ऊपर और मेडिटेट करते हैं और भगवान एक उनको सूचना प्रदान करते हैं। भगवान कैसे सूचना देते हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज पहुंचाते हैं कि हे ब्रह्मा, जल्द ही मैं इस जगत में अवतरित होने वाला हूं। अवतार का मतलब है जो नीचे आते हैं, मैं जल्द ही इस जगत में अवतरित होने वाला हूं और आप क्या करो, इन सारे देवताओं को कहो कि आप जो मथुरा वृंदावन आदि की जो भूमि है, जो मेरा नित्य लीला का स्थान है, वहां प्रकट होने के लिए कहो और मेरी जो लीला है उसमें सहायता करो। तो सारे देवतागण आदि आते हैं और उसमें सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तत्प्रियार्थ, देवता कौन है या कौन सा मनुष्य देवता कहलाया जा सकता है? भागवतम कहता है तत्प्रियार्थ, जो भी व्यक्ति भगवान के प्रियता के लिए उनकी सेवा में लगा रहता है वो देवता है। मोर देन डेमिगॉड शास्त्र कहते हैं, देवता से भी बढ़कर है। तो ये कहकर जब ब्रह्मा आए और सारे देवताओं को कहा, तो उसी समय परम भगवान योजना के अनुसार मथुरा में, भगवान इस जगत में आते हैं और जिस स्थान का स्पर्श करते पृथ्वी का, उस स्थान को योगपीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगपीठ। योग का मतलब है जुड़ना। तो भगवान इस जगत में आते हैं तो इस भौतिक पृथ्वी का स्पर्श आदि नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने साथ अपनी सारी चीजों को लेकर आते हैं, अपने धाम को लेकर आते हैं आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में। जिस प्रकार से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो भारत आया तो सब अपनी चीजों को लेकर आया था, है ना, यहाँ भ्रमण करने के लिए भी। तो ये ऐसे एक शूद्र राजा या प्रेसिडेंट के लिए संभव है तो परम भगवान के लिए क्यों नहीं? तो ऐसे परम भगवान कृष्ण इस जगत में आने से पहले अपने धाम को पहले भेजते हैं। धाम का मतलब है निवास, जहां भगवान निवास करते उसको धाम कहा जाता है, और जो भगवान के भक्त का हृदय है उसको भी धाम कहते हैं, या फिर जहां इन चार चीजों का वर्णन होता है उसको धाम कहा जाता है। भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। जैसे हम कहते हैं वृंदावन धाम जा रहा हूं, तो वृंदावन धाम क्यों है? क्योंकि वहां ये चार चीजें सदैव विद्यमान है। तो ऐसे इस मथुरा और वृंदावन आदि में देवतागण प्रकट हो जाते हैं या देवतागण जन्म ग्रहण करते हैं। तो मथुरा में यदुवंश के जो राजा हैं शूरसेन, जो मथुरा प्रदेश है वो उसके राजा थे शूरसेन, और उनके ही पुत्र थे जिनका नाम क्या था? वसुदेव। तो ऐसे वसुदेव और देवकी, जो देवक है उनकी कन्या कौन है? देवकी। तो देवकी का रिसेंटली विवाह हो ही रहा था या हो चुका था, और वो एक रथ के ऊपर बैठे हुए थे और निकल रहे थे वसुदेव के साथ देवकी। और इतना बहुत श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तृत वर्णन इस चीज का आता है किस प्रकार से उनका विवाह आदि हुआ। जब ये विवाह हुआ तो उनका जो भाई है कंस, कंस उनका सगा भाई नहीं था, उनका कजन ब्रदर था देवकी का, राजा उग्रसेन का पुत्र था, उनकी पत्नी थी पद्मावती, पद्मा जिनका पुत्र था। और वास्तव में कंस उग्रसेन से जन्म ग्रहण नहीं किया था, ये आसुरी भाव कंस के अंदर क्यों आया था? क्योंकि ये जो उग्रसेन की पत्नी है वो किसी नदी में कुछ जल लाने या ऐसे भ्रमण करने गई, तो वहां एक आसुर जिनका नाम था द्रुमी, उनको देखा, वो उनसे काम के कारण लालयित हो गया उनका संग करने के लिए। और जब उस द्रुमी ने उस आसुर का जब इस पद्मा ने संग किया, जिसके कारण आगे चलकर उसको किसने जन्म लिया? कंस ने, आसुरी प्रवृत्ति का। तो ऐसे कंस बड़े ही सामर्थ्य और योग्यता के साथ, उत्साह के साथ, उन्होंने सोचा अभी अभी मेरे बहन का शादी हुआ है और भाई का ही कर्तव्य है कि वो उसके साथ रथ हाँकते हुए जाए। क्यों जाता है भाई? क्योंकि जब घर की जो कन्या है वो दूसरे घर जाती है तो उसको बहुत अधिक विरह महसूस होता है, बहुत अधिक दुख महसूस होता है। तो कोई घर का एक व्यक्ति जाए तो उसको थोड़ा सा आराम महसूस हो सकता है। तो ऐसे एक कंस उनका रथ हाके रहा था तो उसी समय आप सब जानते हैं आकाशवाणी सुनता है, साउंड वाइब्रेशन कितना पावरफुल है, वो आपके लाइफ को बदल सकता है, आपके चरित्र को बदल सकता है, आपके जीवन को ऊपर उठा सकता है या आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है साउंड वाइब्रेशन। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कानों से क्या सुन रहे हो। अगर इस संसार में लोग बेड में उठे ना उठे तभी उनके हाथ में क्या होता है, रिमोट। मतलब ये भावना, हम हर समय कंट्रोलर बनना चाहते हैं, बेड में लेटा हुआ है तभी भी कंट्रोलर बनना चाहता है, टॉयलेट में है तभी भी कंट्रोलर बनना चाहता है, ड्राइविंग कर रहा है तभी भी कंट्रोलर, भोक्ता मैं हूं बलवान। हर समय हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि इस जगत में एक ही कंट्रोलर है, वो कौन है, कृष्ण। इसलिए ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर, परमेश्वर का अर्थ है परम नियंता, परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। तो हम ईश्वर बनना चाहते हैं और साथ साथ हम फिर परमेश्वर बनना चाहते हैं, फिर हम अपना जो कंट्रोल करने का दायरा है उसको बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे जो ये साउंड है हम सुबह उठते ही सुनना शुरू करते हैं, टेलीविजन, रेडियो मिर्ची और क्या होता है पता नहीं, बहुत सारे साउंड वाइब्रेशन। अब देखो लोग कब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से बूढ़े हो जाते हैं, जीवन खत्म करते हैं तभी भी उसको सुनते जा रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है, कोई सुख और शांति का कोई झलक उनके चेहरे में नहीं प्रकट होती। क्यों? क्योंकि वो गलत साउंड वाइब्रेशन को अपने कानों में डाल रहे हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं स्कूल के, मैं अभी गीता मैराथन के समय लगभग फरीदाबाद के 50 जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं सब में मेरा विजिट किया था, प्रिंसिपल को मिला था, तो हर प्रिंसिपल मुझे यही कह रही थी या कह रहा था कि जो सातवीं छठे सातवीं क्लास से आगे जो बच्चे हैं वो अनकंट्रोल है, हमसे अनकंट्रोल है और उनके माता पिता से भी अनकंट्रोल है। क्यों? क्योंकि चरित्र का विकास नहीं हो रहा है, में भी भौतिक ज्ञान आ रहा है लेकिन कैरेक्टर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कानों में सही मैसेज, सही साउंड वाइब्रेशन नहीं जा रहा है और इसी कारण से चरित्र की हानि हो रही है। तो ऐसे हम दिन रात इस भौतिक साउंड वाइब्रेशन को सुनते हैं जिसके द्वारा हम खुद अनुभव करते हैं। जैसे बच्चे हैं कितनी चीजें सुनते हैं, मूवीज हैं और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही गुण वैसे ही चीजें उनके अंदर आ जाती हैं। कई बार माता पिता कहते हैं अभी तो 2 दिन ठीक था, अभी क्या हो गया इसको अचानक। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनी, रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं, है ना, आपने जो रेडियो सुने हो आकाशवाणी इसी से हम बोल रहे हैं, बहुत पहले हमने सुना होगा बचपन में, तो वहां वो कहा कहते थे आकाशवाणी मुंबई, आकाशवाणी दिल्ली ऐसे बोलते थे। तो आकाशवाणी वर्ड यहाँ से है, शास्त्रों से है। हाँ, तो आकाशवाणी आकाश से जो आ रहे हैं, तो इन्होंने भी आकाशवाणी सुनी कि अरे मूर्ख कंस तुम जिसका रथ हाँक रहे हो, जो घोड़े हैं उनकी जो लगाम है उसको अपने हाथ में लिए हो, जिनके लिए हाँक रहे हो उसका 8वां जो पुत्र है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कितना भय, आवाज अभी आगे होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं था, है ना, लेकिन सुनने मात्र से, और ऐसे भी नहीं कि किसी एक व्यक्ति से सुनाया गया है कि हाँ कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल बिना कोई पर्सन ये आवाज को सुना उसी क्षण जितना भी अपने बहन के प्रति प्रेम 10 मिनट पहले उमड़ रहा था वो प्रेम एग्जैक्टली अपोजिट परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में? क्रोध के रूप में। उसी क्षण अपने तलवार निकालता है। और अभी अभी नव विवाहिता जो देवकी है, उनका जो वेणी है
बालों को पकड़ लेता है और बालों को पकड़कर गर्दन काटने के लिए तत्पर हो जाता है। हम तो ये देख सकते हैं भौतिक जगत के जो संबंध है, भौतिक जो संबंध है, जो इस प्रकार से केवल अपने स्वार्थ पर आधारित है और किसी चीज पर नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, इस जगत के लोग बिल्कुल मैड है, नमे विदु स्वार्थ गतिमिहि विष्णु। इन लोगों को अपने जीवन का असली स्वार्थ क्या है उसका ज्ञान नहीं है। असली स्वार्थ क्या है? विष्णु है, स्व अर्थ। जब आप स्वार्थ जानोगे क्या है, तभी आप परमार्थ का पालन कर सकते हो, है ना। परमार्थ, परमार्थ कौन है? कृष्ण है। तो ऐसे जब ये कंस ने सुना, अपने मृत्यु किसको भय नहीं है, मृत्यु से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, है ना, क्या क्या नहीं करते, ये सारा जो कृष्ण लीला का स्टार्टिंग यही है, मृत्यु से बचना चाह रहे थे। लेकिन बच पाए कंस समय में नहीं। तो वास्तव में ये मूर्खता है। और फिर जो कंस है वो उनको मारना चाहते हैं, लेकिन वसुदेव जो पति है उसका ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। पति का कर्तव्य क्या है? उसके प्रति जो भी आश्रित है, पत्नी है, बच्चे हैं, या फिर और भी कोई है, उनकी रक्षा करना एक पति का प्रथम धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। किसी भी प्रकार से उसको प्रयास करना चाहिए कि इनके जो मेरे प्रति आश्रित है, जिन्होंने मेरा शेल्टर लिया है, उनको मैं मृत्यु से कैसे बचाऊं, ये उसका ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं, माता पिता न शश्यात् जननी न शश्यात्, कि वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो गुरु नहीं है, जो अपने पर जो आश्रित लोग हैं उनको जन्म मृत्यु से बचा नहीं सकते, उनको अधिकार नहीं है माँ बनने का, पिता बनने का, गुरु बनने का, टीचर बनने का अधिकार नहीं है उनके पास। तो इसलिए उनको बचाने का अर्थ है खुद हमें योग्य होना होगा, क्वालिफाइड होना होगा। तो ऐसे वसुदेव के अंदर वो गुण थे, योग्यता थी। वसुदेव ने तुरंत उनको बोलना शुरू किया। वसुदेव ने कहा कि हे कंस, तुम जो इतना चिंता कर रहे हो, मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये मृत्यु कब जन्म लेती है? मां के गर्भ से एक चीज जन्म नहीं लेती, जन्म जन्म नहीं लेता, बल्कि मां के गर्भ से दोनों चीजें जन्म लेती हैं। एक जन्म भी जन्म लेता है और दूसरा मृत्यु भी जन्म लेता है, दोनों चीजें। हाँ, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो भी प्रोडक्ट आता है कंपनी से बाहर, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगाई जाती है ना, एक्सपायर होने वाले हैं, हम सब पर डाली गई है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अनुभव होता है, फियर। दूसरा क्या है? जब हमारा शरीर हमें कष्ट देता है, जॉइंट्स दर्द होने लगते हैं, कान के पास के बाल क्या होने लगते हैं? सफेद होने लगते हैं, दांत आगे चबा नहीं सकते, स्टमक डाइजेशन पावर खत्म होती जा रही है, पेट बैठने साथ नहीं देती, लंबे समय तक कार्य नहीं, क्रियाशील नहीं रह सकते। तो ये सब एक्सपायरी डेट के कुछ महीने बच गए हैं। तो ये प्रोडक्ट बाहर आता है, उसमें दोनों डेट होती है, जन्म का डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु की डेट हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो छपी होती है। जैसे आप पहले मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, स्क्रैच कार्ड है ना, स्क्रैच करना पड़ेगा। हाँ, तो स्क्रैच आप करोगे कैसे? श्रवणम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। हाँ, तब पता चलेगा कि मृत्यु कब आने वाला है। पदम पदम यत विपदम, कि क्षण, किसी भी क्षण क्या है? एक्सपायर होने वाला हूं। किसी भी, और वैसे एक्सपायर ही कहते हैं, वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, ठीक है, इसका मतलब उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित है। इसी प्रकार से वसुदेव कंस को बताने लगे, अरे तुम इतना मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, बल्कि ये जो मृत्यु है इसने तो कब से जन्म ले रखा है, और वास्तव में ये जो मृत्यु हमारे साथ एक शैडो, एक छाया के बाती होता है। जैसे शैडो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकती, आप चलोगे तो छाया आपके साथ ही होती है शरीर की, उसी प्रकार से ये मृत्यु है, एक कंस ये मृत्यु उसी प्रकार से हमारे साथ है। कोई व्यक्ति 25 साल का हुआ है, वास्तव में वो 25 साल क्या हो गया है, मर गया है। तो इस प्रकार से बहुत वंडरफुल जो रीजन है, जो वसुदेव है वो उनको बता जा रहे थे, कंस को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हर पल मर रहे हैं और हर प्रकार से हम मृत्यु का सामना कर रहे हैं हमारे पूरे जीवन में। और वास्तव में ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आदि से, और फाइनली इसका ये क्या होने वाला है, विनाशशील है। कोई फाइनली मिट्टी में मिलने वाला है, कोई लोग इसको जमीन में रख डाल देते हैं, या कोई लोग जलाते हैं, या जो पारसी आदि होते हैं वो फेंक देते हैं बॉडी को, फिर वो वहां गीद है, कुत्ते हैं, श्रृगाल आदि है वो खाते हैं, और उनके स्टूल से वो फिर से मल में परिवर्तित हो जाता है या मिट्टी में परिवर्तित होता है। तो फाइनली ये शरीर विनाशील है, तो तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो, क्योंकि ये मृत्यु क्या है, जस्ट परिवर्तन है। जिस प्रकार से हम चलते समय एक कदम आगे डालते और समझते कि अभी ये कदम बहुत फिक्स हो गया है, तभी दूसरा कदम उठाते कि नहीं, तो वैसे जब हमारा बॉडी निश्चित है, जब हम मरते हैं तो अगला शरीर हमारे लिए प्राप्त होना निश्चित है। इस प्रकार से इस मृत्यु आदि की चर्चा कंस के साथ वो करने लगते हैं बहुत विस्तार रूप से, और कंस उसको सुनते जा रहा है। कंस ने कहा, वसुदेव ने कहा कि हे कंस, तुम्हें इतना द्वेष करना अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति द्वेषी होता है, दूसरों से जलता है, ईर्ष्या करता है, वो एक क्षण के लिए भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, उसको सांप से उसकी तुलना की गई है। सांप कुछ ना करो वो काटते रहता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही स्वभाव है, द्वेषी व्यक्ति का यही स्वभाव है, कुछ हो ना हो हम क्या करेंगे, तंग करना शुरू करेंगे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जो ईर्ष्यालु या द्वेषी व्यक्ति है वो इस जगत में भी सुखी नहीं रहता और परलोक में भी वो सुख का अनुभव नहीं करेगा। इसलिए तुम तो उच्च पुल में जन्म लिए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, इस चीज से मुक्त हो जाना चाहिए। तो ऐसे वसुदेव ने कहा कि देखो, इसको बच्चे होंगे या नहीं होंगे किसको पता है, लेकिन तुम्हें अभी क्यों इतना डर है कि इसको मारने के लिए तत्पर हो रहे हो। तब वसुदेव ने कहा, उनको वचन दिया कि तुम यदि चाहते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी संतान देवकी के गर्भ से जन्म लेगी, हर संतान को मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम्हें देवकी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम किससे है, उसके संतान से है। तुम्हें जब संतान जन्म लेगी तो मैं वो आपको लाते दे दूंगा, तुम उसे मार डालो या जो मर्जी करो उसके साथ। तो जस्ट उस समय उसको बचाने के लिए वसुदेव ये सारी युक्ति बोल रहे थे, और कंस को फेथ हो गया, क्योंकि वसुदेव बहुत सत्पुरुष थे, और वो अपने वचन को बिल्कुल गंभीरता से अपने वचन का पालन करते थे। तो आसुरी व्यक्ति भी, कंस जैसा आसुर भी, उनके वचनों में विश्वास करता है और वसुदेव और देवकी को छोड़ता है। तो वसुदेव देवकी जब चाहते हैं तो लगभग एक साल के बाद एक पुत्र जन्म लेता है, और पुत्र जब जन्म लेता है वसुदेव उस बालक को लाकर उनके हाथ में देता है, और कंस देखता है कि अरे कितना कटिबद्ध है, कितना वचनबद्ध है, ट्रूथफुल है, सत्यवादी है। तो उस बच्चे को वापस करता है। वापस जाने के बाद वसुदेव वापस जाते हैं, और ये जो कंस है अभी तो थोड़ा सा स्थिर हो गया था, लेकिन तुरंत हाँ जो उसके संगी हैं, उसके मित्रगण हैं, उनके साथ मिलता है, जो भक्त नहीं थे, अभक्त थे। ऐसे असत संग को करने के कारण वो अपना डिसीजन चेंज करता है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मन और इंद्रिय बहुत अधिक चंचल है, वो कभी भी किसी चीज में स्थिर नहीं रह सकता, अपने डिसीजन में, अपने किसी भी कार्य आदि में दृढ़ता का भावना उसके अंदर कभी भी आ नहीं सकता। बजते माम दृढ़व्रता, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा है, अपने चंचल मन को पागल घोड़ों के बातें फ्री छोड़ रहा है, वो व्यक्ति भक्ति में भी स्थिर नहीं हो सकता, हमेशा चंचल बना रहेगा। और शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति के वचनों में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के वचनों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर हाँ उस समय वो प्रभावित हो जाता है, वो सोचता है नहीं नहीं हाँ ये कोई भी, ये विष्णु कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो उसी समय नारद भी आते हैं, नारद उनको मिलने के लिए आते हैं और नारद उनको कहते हैं कि अरे कंस तुम क्या कर रहे हो। बल्कि नारद को जल्दी लगी थी कि अरे आठवें पुत्र के रूप में आने वाले, थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, भगवान क्या है, जल्दी अवतरित हो जाए, हमें उनके लीलाओं को देखने का सुनने का मौका मिलेगा। तो नारद तो सब कुछ जल्दी चाह रहे थे, फास्ट। तो उन्होंने कहा एक फूल लेके आए जिसमें पंखुड़ियां थी 7-8। उन्होंने कहा देखो ये जो विष्णु है ना, जो कृष्ण है ना, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। वो आठवें हैं तो पहले भी बन सकते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कुछ भी बन सकते हैं। उन्होंने फूल लिया, कहा देखो गिनो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यहां से गिनो आठवें को, फिर से 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो फिर कंस को फिर से बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा बुलाओ उसको। कंस ने बुलाया, वसुदेव हाँ पुत्र के साथ आया और उस पुत्र को क्या करता है, मार डालता है। और फिर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद किया जाता है। और फिर हम जानते हैं कि हर साल एक संतान उत्पन्न होती थी और वो हाँ कंस को अर्पित की जाती थी और कंस उनको मारता था। ऐसे कितने बच्चों को मारा, 6 ना, कंफर्म कि नहीं, मुझे आप भ्रमित कर रहे हैं, 6 को उन्होंने मारा। तो ये 6 वास्तव में कंस के पुत्र थे। हाँ, पुराणों में वर्णन आता है इन 6 को कहा जाता है षड गर्भ। तो ये जो 6 बच्चे थे, कंस अपने पूर्व जीवन में हिरण्यकश्यप के पुत्र थे कालनेमी। तो ये कालनेमी के 6 बेटे थे और इन 6 बेटों ने तपस्या की और ये वर मांगने के लिए है कि हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हम इसके द्वारा नहीं मरने चाहिए, उसके द्वारा नहीं मरने चाहिए, इस विधि से नहीं मरने चाहिए। हाँ, तो कालनेमी ने सोचा मेरा जो पिता हिरण्यकश्यप वो इतना बड़ा भगवान है, उसकी शेल्टर, उसका आश्रय ग्रहण नहीं किया, उनसे वर नहीं मांगा, उनकी पूजा अर्चना नहीं की, इन मेरे 6 बेटों ने किसकी पूजा करना शुरू कर दी है, ब्रह्मा की। तो कालनेमी ने कहा कि तुम्हारा वर तुम्हारे कौन करेंगे, पिता ही करेंगे। तो इसलिए आगे चलकर हाँ वही कालनेमी कंस बनते हैं और उनको मारते हैं। हाँ, इस प्रकार से हाँ ये जो कृष्ण चरित्र है, कृष्ण का जो प्राकट्य है, हाँ वो आगे बढ़ता है। पर हम जानते हैं कि किस प्रकार से फिर हाँ 7वें रूप में जो बलराम है हाँ वो देवकी के गर्भ में निवास करते हैं, भगवान के प्रथम विस्तार। हाँ, तो ये जो कृष्ण कथा है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले संडे। कृष्ण के दिव्य जो जन्म लीला है उसका और थोड़ा सा विस्तार से सुनेंगे और भी कोई एक आसुर की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगले आने वाले संडे में। हरे कृष्णा, दोनों हाथों पर कीजिए और बोलिए लाउडली,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जन्माष्टमी महामहोत्सव के, वृंदावन धाम के, श्रील प्रभुपाद के, गौर प्रेमानंद।